जब मैं सदका देता हूँ और मेरे दिल में ये बात आती है कि मुझे इन रिटर्न 70 गुना मिलेगा, या मैंने एक दिया है तो उसका 10 मिलेगा, तो क्या ये भी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है? ये क्वेश्चन है इंसान का, बहुत ही अच्छा सवाल। नहीं, ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। पहले पहले सिंपल जवाब क्यों नहीं है, मैं उसको उसको समझाता हूँ। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं जो पहले मैं थोड़ा सा मुझे एक और जिक्र करूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ही नेक आदमी है, और मैं समझता हूँ इस वक्त एक मैं उन्हें वलीउल्लाह से कम नहीं समझता। वो मेरे मतलब मुझसे एज में बड़े हैं और मेरी बड़ी दोस्ती है उनसे। उन्होंने एक दफ़ा एक बात कही, बड़े सीधे साधे से प्रैक्टिकल आदमी है, उन्होंने एक बात कही, और वो अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा भी है, मतलब बहुत पैसा अल्लाह ने उन्हें दिया है, लेकिन बहुत नेक आदमी है, बहुत ही नेक, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही लो प्रोफाइल में रहने वाले। एक दिन वो बैठे हुए थे, किसी ने कोई बात कोई कर रहा था, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अमीर होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो सदका बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। ये जिस दिल से, यानी मैं चूंकि पर्सनली उन्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि उनके लिए माल ज़ीरो मोहब्बत उस आदमी के दिल में माल की है। मैं यानी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, अल्लाह ने उनको बहुत माल दिया, लेकिन माल की उनके दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं। और उन्होंने इस यकीन से ही जुमला कहा कि अगर कोई अमीर होना चाहता है तो उसको चाहिए कि सदका बढ़ा दें। मतलब उनका कहना यह था कि अगर आप सदका, मतलब आप सदका दें वो अमीर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया रिटर्न का। अच्छा, अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मटीरियलिज्म नहीं है, कि अगर आप सदका देते हैं और आपके दिल में ये बात आती है और आप सोचते हैं कि अल्लाह ने 70 गुना का कहा है या 10 गुना का कहा है, जो भी, तो क्या ये ख्याल मेरे दिल में आ रहा है तो क्या ये मटीरियलिज्म है, क्या ये लव ऑफ मनी है? ये लव ऑफ मनी नहीं है। उसकी वजह और भी मैं आपको बताता हूँ। इवन मुझसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम जन्नत की मोहब्बत में नेक काम करते हैं तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। मुझसे किसी ने पूछा कि सर, जन्नत की मोहब्बत में अल्लाह ने जो रिवॉर्ड्स दिए हैं जन्नत, तो उसकी वजह से अगर मैं नेकी कर रहा हूँ तो क्या ये नेकी है? बिल्कुल ये नेकी है। किसी को ये डाउट हुआ, किसी ने पूछा कि सर, ये भी तो एक मटीरियलिज्म तो नहीं है? तो मैं अब आपको दो बातें इसमें एक बात ही बल्कि क्लियर करूँगा, जिससे पूरी बात समझ आ जाएगी। देखिए, जो कंटेम्प्रेरी लॉजिक होती है उसका बिलीफ जो है ना, वो टेंजिबल, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, वेरीफाइबल किस्म की चीज़ों पर होता है। लेकिन जो ये वाली जो लॉजिक है, यानी वो इंसान जो ये कहता है कि मैं सदक़े में 10 रुपये देता हूँ तो उसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 70 टाइम्स या 700 टाइम्स मुझे अल्लाह देगा, तो जिसका ये बिलीफ है, ये कंटेम्प्रेरी लॉजिक के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि ये बिलीफ जो है वो गैब के ऊपर खड़ा है। जब मुसलमान की लॉजिक एक है गैब बेस्ड लॉजिक, एक है कंटेम्प्रेरी लॉजिक। जो कंटेम्प्रेरी लॉजिक है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसे थे, तुम ये बैंक में रख देते तो तुम्हें इतना काइबोर चल रहा था, इतना इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तुम्हें इतने पैसों पे तुम्हें इतने अरसे के बाद तुम्हारे इतने पैसे बन जाते, तुमने इसकी प्रॉपर्टी ले लेते तो इतने पैसे मल्टीप्लाई हो जाते, ये है कंटेम्प्रेरी लॉजिक। लेकिन दूसरी जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक है कि अगर मैं अल्लाह की राह में पैसे देता हूँ तो अल्लाह मुझे बढ़ा के रिटर्न करेगा, इस दुनिया में भी देगा, इस पे बिलीव रखना, ये ईमान का हिस्सा है, ईमान बिल गैब का हिस्सा है। यानी बिल गैब का मतलब ये है कि वो गायब है, आपने उसको देखा नहीं है। अनदेखे ईमान लाने का मतलब ये, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको टेंजिबल फॉर्म में आप किसी आदमी पर प्रूफ नहीं कर सकते, बस ये आपके दिल का यकीन है कि ये मिलेगा। जन्नत भी आपने देखी नहीं है, लेकिन अनदेखे आपने उस जन्नत पे माना है, आपने कहा है कि बस उसने अगर मुझे कहा है कि जन्नत में दाखिल करूंगा तो मैं मानता हूं कि वो मुझे जन्नत में दाखिल करेगा, अगर उसने कहा है कि इस चीज़ पे इनाम दूंगा तो मैंने वो इनाम जो मुझे अभी फौरन नहीं मिलेगा और उस दुनिया में मिलेगा और जब मरूंगा उसके बाद मिलेगा, और बस उसने कहा है तो मैं मानूंगा कि वो मिलेगा और मैं उस पर बिलीव करता हूँ। तो ये कंटेम्प्रेरी लॉजिक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और यही मतलब आप समझिए कि ये जो चीज़ है ये ईमान का नतीजा है, ये बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ इन्फाक के बारे में मैं और कहूँ, सूरह फातिहा के फौरन बाद कौन सी सूरह, कुरान जब शुरू होता है सूरह बकरा के अंदर जो इब्तदाई 5 आयात हैं, वो दीन का खुलासा है। हुमुल मुफ्लिहून तक जो आयात हैं ना, 5 आयात हैं, वो खुलासा है, दिस इज समरी। और एक्चुअली वो सूरह फातिहा इतनी हाई स्कोप दुआ है, उसमें आपने एक चीज़ मांगी तो एक अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर एक یعنی جیسی سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور اب آپ آگے بڑھے تو اگلی پانچ آیات میں آپ کو کمپلیٹ, یعنی وہ کمپلیٹ ہے, وہ مطلب اس میں سب کچھ ہے. آپ اگر ان پانچ آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی جو قرآن ہے وہ اسی کی تفسیر معلوم ہوگا. آپ کو لگے گا کہ ریسٹ آف دا قرآن از دا تفسیر ڈن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف دا انیشیل آیات. آپ کو ایسا محسوس ہوگا, آپ کو لگے گا اسی کی ڈیٹیل ہے, اسی کی اپلیکیشن سائٹ ہے, اسی کی ڈیٹیل. وہ جو اس میں آپ سے ایک بات مانگی جا رہی ہے, انفاق کے بارے میں ایک بات سمجھیے کہ وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا, اس کی جو ڈیپینڈنس اور اس کا جو انحصار ہوتا ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے, کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو سب سے زیادہ بھروسہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کس پہ؟ مال پہ, فائنینس پہ. سب سے زیادہ بھروسہ اس کو ہوتا ہے اپنی دولت پہ, مال پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے. تو ان پانچ آیات میں جو سورہ بقرہ کی فرسٹ فائیو آیات ہیں, اس میں ایمان لانے کے بعد جو ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے یا ان سے جو ایکسپیکٹیشن شیئر ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب وہ ایمان لے آئے ہیں, ایمان لانے کے بعد اپنا بھروسہ جس چیز پہ ایمان لانے سے پہلے تمہارا بھروسہ ہوا کرتا تھا, چونکہ اب تم ایمان لے آئے ہو, لہٰذا اب جو مال تمہارے پاس ہے, مال انسان کہتا ہے یار اس پہ تو میرا سارا بھروسہ ہے, میں اگر یہ میرے پاس سے نکل گیا تو میرا کیا بنے گا, تو چلا گیا تو پھر کون میرا, پھر میرا میں کیسے جیوں گا, میں کیسے سروائیو کروں گا, مال پہ تو وہ بیس کر رہا ہے. تو اسے کہا گیا مال خرچ کر دو, مال خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پر بڑی رعایت ہمارے ساتھ کی گئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سارا خرچ کر دو, یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب بس کہا گیا کہ بس وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو خرچ کرنے میں انفاق میں آگے وہ بڑھتا ہے جو ایمان میں آگے ہوتا ہے, اور انفاق میں کم وہ ہوتا ہے جو ایمان میں کم ہوتا ہے. یہ یعنی عجیب سی قوم, کیونکہ آپ یعنی یہ جو کھلے دل سے انفاق کرنا ہے وہ وہی ہے کہ ٹھیک ہے میں مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, میں اس میں نہیں سوچوں گا اتنا, مجھے میں مال پہ میری ڈیپینڈنس اس پہ نہیں ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ مال پر سے اس کا بھروسہ اس نوعیت کا نہیں رہنے دیتا. یعنی یہ تو اس کو اس طرح تو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے, اور یہ اللہ مطلب یعنی انسان کی سائیکی کیسی ہونی چاہیے مال کے بارے میں, انسان کی سائیکی ایسے ہونی چاہیے کہ اس میرا کفیل وہ ہے, ٹھیک ہے میری کفالت وہ کرتا ہے, میرا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے, اور اس نے میری سروائیول کے لیے مجھے کچھ مال دیا ہے, اور وہ اس امتحان کے ساتھ دیا ہے کہ میں اس مال پر بہت زیادہ میری محبت نہ ہو, اس کو میں اپنے دل سے بہت قریب نہ کروں, اور اس کو میں لوگوں کو دوں,